दिन भर 6 अक्टूबर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार ने पिछले 15 महीनों में भारत को व्यवसाय करने के लिए एक आसान जगह बनाया।
इंडिया रिप्रेजेंट्स अ ब्राइट स्पॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। वी हैव वर्क एग्रेसिवली इन द लास्ट 15 मंथ्स।
बताएंगे क्या सोचना है भागलपुर के बुनकरों का, बिहार चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के बारे में।
हमारा 10-15 साल थे खूब बहु मानुष हजार मानुष दुखी है ऐसे।
और नजर डालेंगे किस तरह पानी की वजह से हो रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में विस्थापन। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में गंभीर आर्थिक हालात के बीच भारत निवेश के लिए एक आकर्षक जगह के तौर पर उभरा है। ये बात उन्होंने भारत जर्मन शिखर वार्ता के दौरान जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के साथ साझा मंच पर कही। 2 दिन के भारत दौरे पर आई जर्मन चांसलर आज बेंगलुरु भी गईं और वहां उन्होंने इंडो जर्मन सम्मेलन में हिस्सा लिया। मशहूर लेखिका और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भांजी नैनतारा सहगल ने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का फैसला किया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार देश की सांस्कृतिक विविधता की हिफाजत करने में नाकाम रही है और इसीलिए वो सम्मान लौटा रही हैं। उन्होंने हाल की कुछ हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उस समझौते को अवैध करार दे दिया है जिसके तहत तकनीकी और अन्य क्षेत्र की कंपनियां निजी डेटा यूरोपीय संघ से अमेरिका भेजती हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब आयरलैंड के नियामकों को ये फैसला करना होगा कि क्या फेसबुक की तरफ से यूरोप से अमरीका को भेजे जाने वाले डेटा पर रोक लगानी होगी। सेफ हार्बर नाम का यह समझौता पिछले 15 साल से लागू है। फेसबुक का कहना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और वो इस बारे में पूरा सहयोग करेगा। यूरोपीय न्याय आयुक्त फेरा यूरेरा का कहना है कि लोगों के निजी डेटा को सुरक्षित करने के लिए अमरीकी अधिकारियों से बातचीत हो रही है। हमारा उद्देश्य अमेरिका से इस बारे में चर्चा को तेज करना है कि अटलांटिक के आर पार होने वाले डेटा ट्रांसफर के लिए एक सुरक्षित ढांचा तैयार किया जाए। ये थे यूरोपीय न्याय आयुक्त के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के वायु क्षेत्र में रूसी लड़ाकू विमानों के घुसने की घटनाओं को लेकर तुर्की और नेटो ने रूस पर दबाव बढ़ा दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका देश इस तरह के उल्लंघनों पर चुप नहीं बैठेगा और इससे रूस के साथ तुर्की की दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। वहीं रूस का कहना है कि नेटो इस मामले को तूल देकर सीरिया में उसके उद्देश्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। नेटो और तुर्की सीरिया में राष्ट्रपति असद के समर्थन में होने वाले रूस के हवाई हमलों का विरोध करते हैं। इस साल का भौतिकी शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों जापान के ताकाकी काजीता और कनाडा के आर्थर बी मैकडोनल्ड को देने की घोषणा की गई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस का कहना है कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे सामान्य तौर पर मिलने वाले कणों न्यूट्रीनोस को लेकर अद्भुत खोजें की हैं। और अधिकृत पश्चिमी तट पर इसराइली बलों के साथ झड़पों में दर्जनों फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फसल का। आईटी उद्योग के संगठन नैसकॉम द्वारा बंगलुरु में आयोजित इंडो जर्मन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने 15 महीने में भारत को व्यवसाय करने के लिए एक आसान जगह बना दिया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल भी इस सम्मेलन में शामिल थी। आज उनके भारत के दौरे का आखिरी दिन था। दोनों देशों ने कल 18 क्षेत्रों में सहयोग के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
2 दिनों से भारत के दौरे पर आई जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की मेहमान नवाजी में प्रधानमंत्री मोदी गंभीरता से जुटे हैं। चांसलर और उनके साथ आए जर्मनी के उद्योगपतियों को वो एक बेहतरीन सेल्समैन की तरह अपने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बेचने में लगे हैं। कल जर्मनी के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत में व्यापार करने में दिक्कतों की शिकायत की थी। इस तरह की शिकायत कई देशों के निवेशक करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि अब भारत में काम करना, उद्योग लगाना और व्यापार करना काफी आसान हो गया है।
इन द लास्ट 15 मंथ्स टू मेक इंडिया एन इजी प्लेस।
पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 15 महीनों में भारत को व्यवसाय करने के लिए एक आसान जगह बना दिया है। श्री मोदी ने कहा, हमने निवेशकों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। जर्मन कंपनियों की आसानी के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसका काम जर्मन कंपनियों को आने वाली कठिनाइयों को दूर करना और उन्हें व्यवसाय करने के लिए उन्हें आ रही परेशानियों को दूर करना है। सम्मेलन में चांसलर मर्केल ने कहा कि जर्मन इंजीनियरिंग और भारत के आईटी क्षेत्र में हुनर बेंगलुरु में आकर मिलते हैं। इससे पहले दोनों नेताओं ने ऑटो पार्ट्स बनाने वाली जर्मन कंपनी बॉश के बेंगलुरु प्लांट का दौरा किया, जहां अधिकारियों के अनुसार सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल सकता है। दोनों देशों ने $225 करोड़ के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत के हरित ऊर्जा गलियारे और सौर ऊर्जा उद्योग के विकास में जर्मन निवेश शामिल है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
सीरिया पर रूसी हवाई हमलों को लेकर हालात और संगीन हो गए हैं। नेटो का कहना है कि रूसी विमानों का तुर्की की वायु सीमा में घुसना महज इत्तेफाक नहीं था। उधर रूस का कहना है कि खराब मौसम के कारण रूसी विमान चंद सेकेंड्स के लिए तुर्की की वायुसेना में दाखिल हुए थे, लेकिन तुर्की ने फिर इल्जाम लगाया कि रूसी विमान दूसरी बार भी उसकी सीमा में दाखिल हुए। BBC संवाददाताओं से मिली रिपोर्टों का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
रूस ने पिछले हफ्ते सीरिया पर हवाई हमले शुरू किए थे। अमरीका भी रूस के इस कदम से सहमत था, बशर्ते ये हमले सिर्फ और सिर्फ चरमपंथी गुटों के ठिकानों पर किए जाएं। लेकिन तभी से सीरिया से ये शिकायत भी आने लगी कि रूस दरअसल सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद के विरोधी संगठनों के ठिकानों और नागरिकों पर हमले कर रहा है। हालांकि रूस इस बात से साफ इनकार करता है, लेकिन अब तुर्की ने भी ये शिकायत की है कि रूसी विमान उसके वायु क्षेत्र का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तुर्की अब तक 2 बार रूस के राजदूत को इस सिलसिले में सम्मन कर चुका है। शनिवार और रविवार को लगातार 2 बार रूसी विमान उसकी सीमा में दाखिल हुए। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि रूस का ये सीमा उल्लंघन नाकाबिले बर्दाश्त है और नेटो देश इसे गंभीरता से ले रहे हैं। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि फिलहाल उनका मॉस्को के साथ सीधा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन नेटो देशों ने रूसी कमांडरों से सीधे बात करने पर विचार किया है ताकि फिर से किसी गलतफहमी के तहत ये सीमा उल्लंघन न हो।
We have lines of military to military communication.
नेटो और रूस के बीच सेना के संवाद की सीधी लाइन है और मुझे लगता है कि हम इन लाइनों के जरिए सैन्य अधिकारियों से सीधे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि तुर्की के वायु सीमा क्षेत्र का उल्लंघन हमारे लिए कितनी गंभीर बात है।
येंस स्टोल्टनबर्ग के शब्द। वही रूस लगातार यही कह रहा है कि वह चरमपंथी गुट IS के ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है। रूस ने कहा कि दूसरी बार हुए उल्लंघन की वह जाँच करेगा। दूसरी तरफ तुर्की ने यूरोपीय संघ को चेतावनी दी है कि अगर सीरिया में गृह युद्ध और तेज होता है तो इसके नतीजतन वहां से यूरोप आने वाले लोगों की तादाद में और भी इजाफा होगा। स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने यूरोपीय संसद को बताया कि राष्ट्रपति असद के जीतने का मतलब है सीरिया से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन।
ड्यूरिंग माई विजिट टू द रीजन Whoever I spoke to, presidents or refugees in the camp.
इस क्षेत्र में अपनी यात्रा के दौरान मैं जिनसे भी मिला, तुर्की, जॉर्डन या मिस्र के राष्ट्रपति या शरणार्थी, सभी ने मुझे एक ही चेतावनी दी। रूस और ईरान के इस क्षेत्र के संघर्ष में शामिल होने से राष्ट्रपति असद के जीतने की संभावना बढ़ गई है और अगर ऐसा होता है तो सीरिया से भागने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तुर्की के अनुमान के अनुसार अलेप्पो और इसके पड़ोसी इलाकों से करीब 30 लाख लोग यूरोप पलायन कर सकते हैं।
डोनाल्ड टस्क के शब्द। रूस के सीरियाई गृह युद्ध में सीधे शामिल होने से हालात फिलहाल बदतर ही हुए हैं। सीरिया का युद्ध और चरमपंथी गुट IS अब सिर्फ एक खास इलाके की समस्या नहीं है। प्रवासियों के चलते अब ये यूरोप के लिए भी विकट समस्या बन गया है। अमरीका, रूस और यूरोप के अपने अपने दावे हैं इस क्षेत्र पर और इसमें उलझा हुआ है एक आम सीरियाई नागरिक जिसे शिद्दत से इंतजार है अमन का, ताकि वह भी रोजमर्रा की जिंदगी चैन से बसर कर सके।
नेटो और रूस के बीच वाकयुद्ध। बिहार में भागलपुर के बुनकरों का कहना है कि साल दर साल राजनीतिक दलों ने सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को छला है और उन्हें अपना वोट बैंक ही बनाए रखा है, जबकि किसी ने भी उनकी बुनियादी जरूरतों के बारे में कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और फिर एक बार राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता को मुद्दा बनाया है, मगर इस बार भागलपुर के बुनकरों का बिल्कुल अलग ही मिजाज है। आज वो राजनीतिक दलों से सवाल पूछ रहे हैं। इन बुनकरों का कहना है कि उनको किसी भी राजनीतिक दल से परहेज नहीं है जो उनके हितों के बारे में सोचे, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। बीबीसी संवाददाता सलमान रवि ने भागलपुर के चंपानगर में बुनकरों से मुलाकात की तो उन्होंने कुछ इस तरह अपने दिल की भड़ास निकाली।
इस वक्त मैं भागलपुर के बुनकरों के इलाके में हूं, जो सबसे बड़ा इलाका है चंपानगर। मेरे साथ बुनकर समाज के बहुत सारे लोग हैं, इनमें बुनकर संघर्ष समिति के भी सदस्य हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा,
मोहम्मद जियाउर रहमान,
किस रूप में देखता है बुनकर समाज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को?
भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है पूरे वर्ल्ड में, और बस नाम ही ये काफ़ी रह गया है। हमारी उम्र भी 50 साल हो रही है। बड़ा अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने बुनकरों के लिए जो है भागलपुर में 100 करोड़ का एक क्लस्टर दिया, तो एक उम्मीद की निगाह से तो हम देख ही रहे। कुछ दिन पहले फिर एक योजना हमने सुना कि वो बुनकरों के लिए खास करके उन्होंने बैंकर्स को कहा कि छोटे बुनकर को 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन दें, उनके कारोबार को बढ़ाएँ, तो एक उम्मीद जगी है।
मैं मोहम्मद निजात अंसारी बुनकर संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। इससे पहले देश में यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी आज तक सत्ता में रही, लेकिन देश के अंदर वो गरीबों को गरीब बनाने का काम किया, अमीरों को अमीर बनाने का काम किया। फिर लालू प्रसाद आए, यहाँ पर बदलाव हुआ, हम लोग जो है कांग्रेस को हटा दिए। लालू प्रसाद 15 साल तक छलावा करते रहे, ठगते रहे, ये देंगे वो देंगे, और मुसलमानों का मसीहा कहलाने वाले वो जो है ठग करके चले गए, उनको भी हटा दिया गया। 10 साल नीतीश बाबू यहाँ पर रहे हो गया, लेकिन नीतीश बाबू का भी यही हाल रहा। 6 जून 2010 को यहाँ पर नीतीश, यही सीटीएस मैदान, हम यहाँ पर जो बोल रहे 100 मीटर दूरी पर ये सीटीएस ग्राउंड है, यहाँ पर नीतीश बाबू आए, बुनकर पंचायत लगाया, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज तक नीतीश बाबू भी कुछ नहीं किया। सेकुलर सेकुलर सेकुलर, बस इसको इसका लूट हो रहा है, चोरी हो रहा है, यही सेकुलर कह कह करके आज जो है हर पार्टी इसको लूट रहा है कि नीतीश बाबू देखिए हम लोगों के साथ कितना बड़ा छलावा किया, जबकि सच्चर आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक हम मुसलमानों के उत्थान के लिए उसको जो है रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन हमें नहीं दे करके हमारे समाज के जो ताती 5% बुनाई का पैसा करते हैं वो उनको से, यानी कि SC ST का जो है ये दे दिया आरक्षण, और हमें नहीं दिया।
तो ये जो कह रहे हैं असलम साहब सेकुलर वाला, तो ये एक वाजिब बात उठा रहे हैं कि इसी नाम पर जो है पूरी पॉलिटिक्स घूमती है सेकुलरिज्म के इर्द गिर्द।
ये सिर्फ सेकुलर हमारे मुस्लिम मोहल्ले में, मुसलमान ही के मोहल्ले में मुस्लिम नौजवानों को ये सेकुलर कह कह के सिर्फ रोटी सेकते हैं लोग। आज जो है अच्छी चीज़ अगर मोदी ने ऐलान किया यहाँ पर टेक्सटाइल के बारे में, तो हम उसको स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद रहा जागे हुए, चूँकि प्रधानमंत्री है देश के, वो जब बोले हैं तो वो देश बोले हैं, और देश के प्रधानमंत्री कैसे उन्होंने जो बोला है उसके उम्मीद रहा हुए मुसलमान, और खास करके बुनकर के कुछ न कुछ इनसे निदान हो, नहीं तो 5 साल के लिए है, 5 साल के बाद इसके निदान में अगर नहीं हुआ हम लोग का मसाइल हल होगा तो हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। और नीतीश कुमार कितना सेकुलर है, लालू यादव कितना सेकुलर है, ये तो हमारे ये इलेक्शन में उन्होंने जो टिकट बंटवारा किया उसी में हम लोग इस सेकुलरिज्म का इनका चेहरा को बेनकाब हो चुका है, जो अच्छी तरह हम लोग पहचान रहे मुस्लिम दानिशवर, अच्छी तरह इनको पहचान रहे वो कितना सेकुलर है।
तो सुना आपने कि बिल्कुल यहाँ चंपानगर में एक ओपिनियन, एक जो राय है वो ये है कि सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत सालों तक ये चुनावी राजनीति होती रही, और अब यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि ये सेकुलर वर्ल्ड से जो चुनावी राजनीति हो रही है, जो लाभ उठा रहे लोग, उस पर रोक लगे और लोग जो है मुद्दों के आधार पर वोट डालें अपने, ख़ास तौर से जो बुनकर समाज है और जो माइनॉरिटी यानी कि जो यहाँ के अल्पसंख्यक लोग हैं भागलपुर के रहने वाले। सलमान रावी, BBC, चंपानगर, भागलपुर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार ने आसाराम समर्थकों द्वारा दिव्य ज्ञान प्रतियोगिता रद्द कर दी है। यौन शक्ति बढ़ाने के उपाय वाली एक किताब पर आधारित इस प्रतियोगिता का आदेश शिक्षा विभाग के अफसरों ने निकाला था और इसी महीने राज्य के 12 जिलों के सभी सरकारी स्कूलों में ये प्रतियोगिता होने वाली थी। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
हत्या और यौन शोषण समेत दूसरे गंभीर आपराधिक मामलों में जेल में बंद आसाराम बापू का छत्तीसगढ़ से गहरा रिश्ता रहा है। राज्य की भाजपा सरकार ने उन्हें शुरू से राजकीय अतिथि का दर्जा दे रखा था और तब मुख्यमंत्री रमन सिंह उनके चेलों में शामिल थे। आसाराम की किताबों को सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेचकर और फिर उन्हीं किताबों के आधार पर प्रतियोगिता कराने का सिलसिला लंबे समय से जारी रहा है। राज्य सरकार आज भले कह रही हो कि यह प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है और कभी कोई प्रतियोगिता नहीं हुई, लेकिन 7 जुलाई 2013 का आसाराम बापू का यह बयान कुछ और ही कहता है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की सभी स्कूलों कॉलेजों में दिव्य प्रेरणा महाप्रकाश प्रतियोगिता भी हो रही है। अनुमति दी कि संत के बुलावे पर अभी बुलाए और अभी दौड़े दौड़े आए। मैं सचमुच आपकी सज्जनता से बहुत प्रसन्न हूँ।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह आसाराम बापू से कितने अभिभूत रहे हैं, यह आसाराम बापू के मंच पर दिए गए उनके वक्तव्य से जाहिर हो जाता है।
छत्तीसगढ़ के लिए आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है। हम सबको आशीर्वाद देने, आगे का मार्गदर्शन करने संत आसाराम बापू जी यदि आज हमारे बीच, कि ईश्वर ऐसे संतों को जब अवतार के रूप में आते हैं तो दिव्य शक्ति देता है। हम लोग यहाँ आते हैं तो कोई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बन के नहीं आते भाई, हम तो बापू के शिष्य हैं, चेले हैं, उनका प्रेम की वजह से आते हैं, उनका आशीर्वाद।
लेकिन ताजा मामला जब सामने आया कि राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में आसाराम बापू के दिव्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए बाजाब्ता आदेश जारी किया है, तो इस पर विवाद शुरू हो गया। इस प्रतियोगिता के लिए जो किताबें स्कूली छात्रों को बांटी गई थी, उस किताब दिव्य प्रेरणा प्रकाश में यौन शक्ति बढ़ाने के उपायों पर लंबी चर्चा थी। कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद अकबर कहते हैं,
आसाराम बापू की किताबों की बात है दिव्य ज्ञान, उसमें जो शिक्षा की बात कही गई है उसमें सेक्स शिक्षा के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और इस प्रकार से किताबों को, कोर्स को, जैसे शिक्षा कर्मी, जैसे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती आउटसोर्सिंग से की जा रही है, उसी प्रकार से इस प्रकार का कोर्स भी आउटसोर्स करके सरकार यहाँ के बच्चों को परोसना चाहती है, वो निंदनीय है। तत्काल ये सब वापस होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन भाजपा विधायक और प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी का दावा है कि आदेश पुराना है और गोलमाल आसाराम बापू के भक्तों ने किया है।
ये आदेश 2012 का है। बापू आसाराम जी के भक्तों के द्वारा ही कहीं न कहीं ये प्रायोजित करके 2012 के आदेश दिखाकर इस प्रकार की किताबों का प्रकाशन कराकर उसको बांटने का काम किया है। जैसे ही सरकार के संज्ञान में ये मामला आया, तत्काल उन्होंने आदेश देकर इन किताबों को वापस लेने का काम किया है।
लेकिन क्या सरकार पुराने आदेश का दावा करके अपनी जिम्मेवारी से बच सकती है?
देखिए, सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती तो तत्काल परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाता और मात्र 12 जिलों में ही ये किताबें बांटी गई थी। कहीं न कहीं अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा प्रवक्ता मोहन सुंदरानी के शब्द। संकट ये है कि कुछ महीने पहले भी आसाराम के भक्तों द्वारा ऐसी ही प्रतियोगिता धमतरी जिले के सरकारी स्कूलों में कराए जाने की बात सामने आई थी। सरकार ने तब भी कार्रवाई का दावा किया था, लेकिन नतीजा बेअसर रहा। दावा अब भी है, नतीजा क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादियों के बाद विधानसभा में अब विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी घाटी में मुसलमानों की संख्या घटाने के लिए कानून का सहारा ले रही है। भारतीय संविधान की धारा 35A पर विधानसभा के जारी सत्र में पिछले 3 दिनों से हंगामा हो रहा है। आज भी सदन में बहुत हंगामा हुआ। इसके बाद विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने पूरे सत्र के बॉयकॉट की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि भारतीय संविधान में धारा 35A के तहत भारतीय नागरिकों को कश्मीर में जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी करने और कॉलेजों में दाखिला लेने की अनुमति नहीं है। श्रीनगर से रियाज मसरूर ने ये रिपोर्ट भेजी है।
भारतीय संविधान की धारा 35A के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को कश्मीर में जमीनें खरीदने, सरकारी नौकरियां हासिल करने, वोट डालने और दूसरे सरकारी फायदे लेने की कानूनी अनुमति नहीं है। इस धारा को RSS समर्थन वाली NGO जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के अध्यक्ष आशुतोष भटनागर ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन सरिंचर को शुरू हुए विधानसभा के सत्र की कार्रवाई पर यह मामला 3 दिन से हावी है और आज भी हाउस में अपोजिशन विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। कानून के मंत्री बशारत बुखारी ने अपोजिशन को आश्वासन दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस धारा का बचाव करेगी, लेकिन अपोजिशन इस पर शांत नहीं हुई। मिस्टर बुखारी ने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार इसका पूरा पूरा बचाव करेगी। इस पर अपोजिशन नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगाया और 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाले विधानसभा सत्र के बॉयकॉट का ऐलान किया।
हमारे एडजर्नमेंट मोशंस को समरली डिसमिस किया गया और बहाना बनाया गया कि मामला सब जुडिस। ऐसे हालात में अगर शोर मचा हाउस में, इस शोर के लिए कसूरवार अगर कोई है तो स्पीकर।
87 सदस्यों पर आधारित कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15, कांग्रेस के 12 और कुछ निष्पक्ष विधायक हैं। इन सब ने सरकार पर आरोप लगाया है कि भारतीय संविधान की धारा 35A को हटाने के खुफिया प्रयासों में RSS और BJP को सरकार का समर्थन मिल रहा है। बहुसंख्यक मुसलमानों का कहना है कि 60 वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर बनी इस धारा से कश्मीर का सेक्युलर कैरेक्टर बरकरार है और इसे खत्म किया गया तो कश्मीर में मुसलमानों की संख्या घट जाएगी। अपोजिशन का कहना है कि 1947 में जो 60,000 हिंदू शरणार्थी पलायन करके भारत आए थे, इनकी संख्या अब 4,00,000 तक पहुंच गई है। कानूनी रुकावट हट गई तो इन 4,00,000 हिंदू शरणार्थियों के साथ साथ सारे सैनिक 3 वर्ष तैनाती के बाद यहां स्थायी निवासी बन जाएंगे। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
दुनिया की बड़ी खबरें BBC के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए TV पर BBC दुनिया, ETV नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है BBC दुनिया, मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं।
उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए BBC दुनिया शाम 9:20 पर ETV के साथ साथ bbchindi.com और BBC हिंदी के YouTube चैनल पर भी। BBC दुनिया।
पानी के प्रकोप के चलते भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में लोगों का विस्थापन बढ़ता जा रहा है। जहां सिक्किम राज्य में बिजली उत्पादन करने वाले बांधों की संख्या से लेपचा प्रजाति के लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते पाटों से लाखों लोग बेघर होते जा रहे हैं। BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने इन इलाकों का दौरा करने के बाद ये रिपोर्ट भेजी है।
नदी के शांत रहने के लिए की जा रही प्रार्थना, पवित्र समझी जाने वाली तीस्ता नदी इनकी जिंदगी का अभिन्न अंग रही है। लेकिन इस अमीर किसान दंपति का घर और जमीन अब इसी नदी की भेंट चढ़ सकते हैं। एक विशालकाय बांध इनके घर और जमीन के पास बन चुका है और उसके लिए जमा होने वाले पानी ने धीरे धीरे इनकी जमीन को निगलना शुरू कर दिया है। ज्ञान ओंगरब लेपचा ने BBC को अपनी लाचारी बताई।
I have been living over here since the time of my birth.
मैं यहीं पर पला बढ़ा और अब मेरी उम्र 50 से ज्यादा है। बदकिस्मती या फिर किस्मत से ही सही, मेरे पिता आज ये दिन देखने के लिए जीवित नहीं हैं। जब से बांध बनना शुरू हुआ, हमारी समस्याएं बढ़ती चली गईं। जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई भी अपने जन्म स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता है।
सिक्किम की मूल प्रजाति के लोगों को लेपचा नाम से जाना जाता है, जो चीन की सीमा से सटे ज़ोंगू पर्वतीय क्षेत्र में रहते रहे हैं। लेकिन भारत के हजारों में से कुछ बांध सिक्किम में भी बन रहे हैं, जिनके चलते लेपचा लोगों को अपनी जमीनें या घर छोड़ना पड़ सकता है। वैसे बांधों के निर्माण से बिजली उत्पादन में वृद्धि आई है, लेकिन स्थानीय लोगों को अब बस अपने घरों से दूर किए जाने का खौफ सता रहा है। हालांकि ज़ोंगू से सैकड़ों मील दूर असम में लाखों ऐसे हैं जो पहले से ही पानी के प्रकोप में विस्थापित हो गए। पिछले कई दशकों में विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी ने अपनी दिशा कई दफा बदली। इस प्रक्रिया में करीब 2000 स्क्वायर मील तक की उपजाऊ जमीन नदी में समा चुकी है। जाहिर है लाखों के घर उजड़ गए। 6 बच्चों के पिता मुशीबुर शेख कुछ वर्ष पहले तक कई एकड़ जमीन के मालिक थे, लेकिन जब नदी इनके घर और जमीनों को निगलने पर आई तो जान बचाकर भागे। अब मजदूरी करके पेट पालते हैं। मुशीबुर शेख कहते हैं,
अमर घर शिलघगरी, हमारा 10-15 साल था कि खूब बहु मानुष हजार हजार मानुष दुखी है ऐसे।
हम बहुत संपन्न थे पर अब नहीं। जब यहाँ पहुँचे तो सिर पर छत नहीं थी, लेकिन इन रेफ्यूजी कैंपों में रहने के सिवा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। मेरी जमीन हमेशा के लिए चली गई।
हालांकि पूर्वोत्तर राज्य की सरकारें कहती तो रही हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उन्हें भी आगे आने वाले समय को लेकर चिंता है। असम के राहत और पुनर्स्थापन प्रमुख पीएल तिवारी बताते हैं,
द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेस्ड विद इज दैट ऑफ इरोजन।
जमीन का कटाव वो सबसे बड़ी समस्या है जिसे हमें झेलना पड़ रहा है। दूसरी विकराल समस्या है वनों की कटाई। अगर ऐसे ही हालात रहे तो समस्या बहुत भयावह रूप ले लेगी। अब मामले को केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ थोड़े बहुत पुनर्स्थापन से काम नहीं चलने वाला।
प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फ्लड्स।
पूर्वोत्तर भारत की गिनती सबसे खूबसूरत इलाकों में होती है, लेकिन जनसंख्या और अत्याधिक विकास ही इस इलाके की चिंता नहीं रहे हैं। कहीं बड़ा मुद्दा है पर्यावरण में आता बदलाव, जिससे यहाँ की विभिन्न मूल प्रजातियों के ऊपर मंडरा रहा है लुप्त हो जाने का साया, जो किसी के हाथ में नहीं है। नितिन श्रीवास्तव, BBC, पूर्वोत्तर भारत।
और अब एक नजर खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल कटक में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेहमान दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भारत को 6 विकेट से मात दी और इसके साथ ही उसने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी ले ली। अब क्रिकेट में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से दोहा में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई। इस चैंपियनशिप के माध्यम से रियो ओलंपिक का टिकट भी मिलेगा। दुनिया भर के मुक्केबाजों के बीच भारत के 6 मुक्केबाज भी अपने पंच का दम दिखाएंगे। आज 49 किलो भार वर्ग में भारत के एल देवेंद्रो सिंह का सामना ब्रिटेन के हॉर्न हार्वे से होगा। 56 किलो भार वर्ग में भारत के शिव थापा का सामना अल्जीरिया के खलील लितिम से और 64 किलो भार वर्ग में मनोज कुमार का सामना मोरक्को के अंधे लाख आताकनी से और 75 किलो भार वर्ग में विकास कृष्णन का सामना हंगरी के जुल्टान हरक्सा से होगा। इस चैंपियनशिप को लेकर भारतीय मुक्केबाजी दल के कोच GS संधु कहते हैं,
जो पहले दो वजन है 49 किलोग्राम और 52 किलोग्राम, इसमें सिर्फ गोल्ड और सिल्वर क्वालिफाई करेगा। 56 वेट कैटेगरी से लेकर 75 तक है, उनमें गोल्ड सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज में से 1 ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज में दोबारा वापस आउट होगा, जो जीतेगा वही ब्रॉन्ज मेडल खेलेगा। 81 किलोग्राम में सिर्फ गोल्ड और सिल्वर क्वालिफाई होगा ओलंपिक के लिए, और 91 किलोग्राम में और प्लस 91 किलोग्राम में सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट ही क्वालिफाई होगा। तो ये जो क्वालिफाई इस बार है, ये काफी टफ है।
उधर इन दिनों भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है, जहां आज उसे मेजबान टीम से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। जब खेल शुरू हुआ तब मैदान में दोनों ही टीमों के समर्थक मौजूद थे, लेकिन 5वें मिनट में ही न्यूजीलैंड ने गोल कर भारत पर दबाव बनाया और उसका लाभ उठाकर अंततः मैच भी अपने नाम किया। दरअसल पहले क्वार्टर के 5वें मिनट में ही न्यूजीलैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे निक हेग ने गोल में बदलकर न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद खेल के 27वें मिनट में न्यूजीलैंड को एक काउंटर अटैक करने का अवसर मिला और जेरेड पांचिया ने गोल कर न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़त दिला दी। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड ए से खेले गए दोनों मुकाबले जीते थे, लेकिन आज न्यूजीलैंड की मुख्य टीम के सामने उसकी दाल नहीं गली। उधर चीन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच, तीसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल और चौथी वरीयता हासिल डेविड फेरर पुरुष एकल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में गंभीर आर्थिक हालात के बीच भारत निवेश के लिए एक आकर्षक जगह के तौर पर उभरा है। मशहूर लेखिका नयनतारा सहगल ने हालिया कुछ हिंसक घटनाओं के विरोध में अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। इस साल भौतिकी शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जापान के ताकाकी काजीता और कनाडा के आर्थर बी मैकडोनल्ड को देने की घोषणा की गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।